मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आइए अब फिलॉसफी की शुरुआत करते हैं। और मैं यह शुरुआत किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी से नहीं कर रहा हूं, बल्कि दर्शन शास्त्र के पीछे जो फिलॉसफी है उससे कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि फिलॉसफी के बारे में आपकी जानकारी क्या है, मुझे यह भी नहीं मालूम कि फिलॉसफी आपका विषय रहा है या नहीं रहा है, लेकिन मुझे जरूर मालूम है कि इस शब्द से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और थोड़ा थोड़ा इस शब्द को लेकर के घबरा भी रह जाते हैं कि यार ये बड़े फिलॉसफी यानी कि कोई कठिन विषय है। मैं इसे सरल तरीके से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि मेरी यह कोशिश आपके मन में फिलॉसफी के प्रति इश्क पैदा कर दे, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए कम आप सबके लिए बहुत ज्यादा। देखिए, जो भी फिलॉसफर है, आप एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जिसे हम फिलॉसफर कहते हैं आप सरल शब्दों में उसे लेखक कह सकते हैं। लेकिन लेखक और फिलॉसफर में फर्क क्या है? लेखक किसी भी विषय पर लिख सकता है, फिल्मकार किसी भी विषय पर फिल्म बना सकता है, कवि किसी भी विषय पर कविता लिखेगा, कहानीकार किसी भी विषय पर कहानी लिखना शुरू कर देगा, लेकिन वो जो भी लिखेगा, जो भी फिल्में बनाई जाएंगी, उनमें कहीं ना कहीं जीवन तो होगा, जीवन झांक रहा होगा। हो सकता है कि वो बहुत पीछे से झांक रहा हो सकता है कि वो बहुत ही छोटे से छेद से झांक रहा हो, लेकिन वो झांक रहा है। तो सामान्य तौर पर जब हम किसी भी कला, साहित्य, संस्कृति की चीजों से जुड़ते हैं, तो वो झांकती हुई जो आंखें हैं जिनसे जीवन टपक रहा है, उसे हम पकड़ नहीं पाते, उसे हम देख नहीं पाते। और चूंकि हमारी धारणा बन गई है कि यह तो मनोरंजन की वस्तु है, तो हम उसे मनोरंजन की वस्तु मान करके उसी नजरिए से देखते हैं, और इस तरह से जो हमारी पूर्व धारणाएं हैं वो उस झांकती हुई आंखों की तरफ से हमारी आंखों को बंद कर देती है, तो हम उसे इंटरटेनमेंट की चीज मानकर छोड़ देते हैं, जबकि जीवन वहां भी है। जो फिलॉसफर है वो विशुद्ध रूप से जीवन की बात करता है। देखिए, वहां जो मैंने लेखक के बारे में बात की, वो विशुद्ध रूप से जीवन की बात नहीं करता, वो अपनी कहानी और कविताओं के जरिए जीवन की बात करता है, उसमें से जीवन झांकता है, जबकि जो फिलॉसफर है वो पूरी तरह से जीवन के बारे में बातें करता है विशुद्ध रूप से। वो अपनी बातों को कहानी किस्सों के माध्यम से नहीं पेश करेगा, वो सीधे सीधे तथ्यों और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को रखता है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि जब तथ्यों और तर्कों के माध्यम से कोई बात रखी जाएगी तो आपको थोड़ा सा उसमें खुरदरापन तो लगेगा, क्योंकि वहां मिलावट नहीं है ना, वहां संगीत की मिलावट नहीं है, कहानी किस्सों की मिलावट नहीं है, रोचकता की मिलावट नहीं है, उसने तो अपनी बात कह दी। तो ये विशुद्ध रूप से जीवन की बात करते हैं, जबकि साहित्यकार जो है बात जीवन की तो करते हैं लेकिन विशुद्ध रूप से नहीं करते हैं। तो आप फिलॉसफर को भी एक प्रकार का लेखक ही मानकर चले, विशुद्ध जीवन लेखक, जीवनी का लेखक नहीं, विशुद्ध जीवन का लेखक। सामान्य तौर पर फिलॉसफर को समझने के लिए लोगों को जो तरीके अपनाने चाहिए, मैं अब उस पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि यदि आप यह तरीका अपना लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी फिलॉसफर को समझना, उसकी फिलॉसफी के बारे में अपनी पकड़ बना लेना मुश्किल काम नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फिलॉसफर के प्रति जो आपकी अरुचि होती है वो खत्म हो जाएगी, आपको फिलॉसफर बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, अपना लगने लगेगा। और देखिए, सीधी सी बात है कि जब कोई अपना लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है, फिर आप उसे भूलते नहीं हैं, आसानी से नहीं भूलते। इसका मतलब है कि अगर फिलॉसफी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगी तो वो आपके दिमाग में मौजूद रहेगी, आप उसे भूलेंगे नहीं। और जब आप उसे भूलेंगे नहीं तो सोच करके देखिए कि जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। यस, ये होता है, और मेरी कोशिश होगी कि ऐसा कुछ चमत्कार आपके जीवन में भी घटित हो। तो आइए, फिलॉसफर क्या है और क्या करता है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। फिलॉसफर भी एक व्यक्ति है, फिलॉसफर भी जैसे आप एक पर्टिकुलर काल में रह रहे हैं, सन 2022 में रह रहे हैं, फिलॉसफर भी किसी एक पर्टिकुलर काल में रहा होगा। हो सकता है कि वो सन 22 में रहा हो सकता है कि वह शताब्दी ईस्वी पूर्व में रहा हो, 500 शताब्दी ईस्वी पूर्व में रहा हो। तो फिलॉसफर भी किसी न किसी एक पर्टिकुलर काल में रहता है। हो सकता है कि वो आज से 2500 साल पुराने वक्त में रहा हो, लेकिन था ना, उसका भी कोई वक्त था, अपने दिमाग में रखिए। वो हवा में बात नहीं कर रहा है, वहां से आकाशवाणी नहीं हो रही कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ आवाज आ रही है और वो आवाज रिकॉर्ड कर ली गई है। नहीं, फिलोसोफर एक व्यक्ति था जैसे आप हैं। वो जो फिलोसोफर है वो एक पर्टिकुलर टाइम में रह रहा था, टाइम पीरियड में रह रहा था, जैसे कि आप 2022 के अभी टाइम पीरियड में रह रहे हैं। और फिलोसोफर के आसपास एक समाज था, वो समाज का नागरिक था, वो समाज में रह रहा था, जैसे कि आप एक समाज में रह रहे हैं, आप एक समाज के नागरिक हैं। मैंने समाज की बात की, इसे आप राष्ट्र भी कह सकते हैं, है ना, मतलब वो जीवंत समाज का वो हिस्सा है। जैसे दूसरे लोग हैं, ठीक उसी तरह से फिलोसोफर भी एक व्यक्ति है, लेकिन दूसरे से वह हटकर कैसे हो जाता है, बस इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस। और इसे ही समझ लेने के बाद आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि वो फिलोसोफर कैसे बना। फिलोसोफर का मतलब है कि जब वो अपने समाज को देखता है तो देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ तथ्य आते हैं। तथ्य इस तरीके के आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, जो कुछ भी ये हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से शुरुआत होती है। यानी कि ये जो समस्याएं हैं या जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसके कारण क्या हैं। तो उसके दिमाग में जब ये बातें आती हैं तो उसका दिमाग कुलबुलाने लगता है, वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी नींद खत्म हो जाती है और सच पूछे तो वो इतने चिंतन में लीन हो जाता है। इसी के कारण कहा जाता है ना कि फिलोसफर बड़ा रूखा व्यक्ति हो जाता है, बड़ा अव्यवहारिक हो जाता है, क्या करे बेचारा, क्योंकि दिमाग में तो वही चल रहा है। आप उसे चुटकुला सुनाने को कहेंगे तो कहां से सुनाए, उसके दिमाग में चुटकुले है ही नहीं, उसके दिमाग में तो बस ये चल रहा है कि यार ये हो क्या रहा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ढूंढ रहा है वो। सच पूछे तो जो फिलोसोफर भी है एक तरह से समाज का वैज्ञानिक ही है। जो वैज्ञानिक है वो प्रकृति के रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करता है और जो दार्शनिक है वो समाज के रहस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बस फर्क इतना ही है। जो प्रकृति के रहस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसके पास हो सकते हैं कि एक प्रयोगशाला हो, लेकिन जो दार्शनिक है इसके पास कोई ऐसी प्रयोगशाला नहीं है। अगर प्रयोगशाला है भी तो पूरा जो जीवंत समाज है उसके आसपास के फैले हुए जो लोग हैं वो प्रयोगशालाएं हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो उसके उपकरण हैं और उनके आधार पर वह जीवन के बारे में कुछ जानने और समझने की कोशिश करता है। वह ढूंढता है कि ये क्या समस्याएं हैं, क्यों हो रही हैं, और इसके बाद फिर वह अपने ढंग से उनके हल सुझाने की कोशिश करता है। और जो वो हल सुझाने की कोशिश करता है उसे ही हम उसकी फिलॉसफी कहते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? कार्ल मार्क्स ने यही देखा ना कि जो औद्योगिक संस्कृति है ये इस तरह की हो गई है और इसने ये संकट पैदा कर दिए हैं, तो इसका समाधान क्या हो सकता है। गांधी जी क्या है? गांधी जी ने जो भी बातें कही हैं आप देखिए कि आप उनकी बातों को उनके समय से हटा करके नहीं देख सकते। उन्होंने भी देखा कि औद्योगिक संस्कृति इस तरह का संकट पैदा कर रही है, तो वो कुटीर उद्योगों की बात करने लगे, भारतीय संस्कृति की बात करने लगे, अपने ढंग से वो कह रहे हैं। तो जो भी फिलोसोफर होता है, मान करके चलिए कि वह अपने समय को एड्रेस कर रहा होता है, समय को संबोधित कर रहा होता है, वो समय को देखता है और समय की मांग के अनुसार वह अपने विचार रखता है और उनके विचारों को ही हम उस दार्शनिक का दर्शन शास्त्र कह देते हैं या दार्शनिक के विचार कह देते हैं। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद यदि आप मुझसे सहमत हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि हमें किसी दार्शनिक को समझना है, और देखिए मैं कह रहा हूं किसी दार्शनिक को समझना है, तो आप चाहे ऋग्वेद को ले लीजिए, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को ले लीजिए, इसके बाद हमारे उपनिषद से लेकर के जो आगे सांख्य और वैशेषिक दर्शन आए हैं इनको ले लीजिए, फिर आप शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद को ले लीजिए, फिर आप भक्ति काल के विशिष्टाद्वैतवाद इन सबको ले, किसी को भी ले लीजिए, आगे तक चले जाइए, आपको इसमें कहीं कोई विचलन नहीं मिलेगा। बिल्कुल वही बात मिलेगी कि ये जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, इन्होंने अपने समय की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अपने ढंग से पद्धतियां दी, विचार पद्धतियां दी, इनके ये हल हो सकते हैं। समय बदलता है यानी कि सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, जब सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं तो समय के अनुकूल समस्याएं भी अपना रूप बदल लेती हैं, जो समस्याएं अपना रूप बदल लेती हैं तो ये जो पुरानी फिलॉसफी है अब ये उसमें उतना काम नहीं कर पाती, तो आपको फिर से अब अपने इस समस्या के सुलझाने के लिए नई फिलॉसफी की जरूरत पड़ती है, तो फिर नए फिलॉसफर आ जाते हैं। यही सब कुछ लगातार होता रहा है। पहली बात, यानी कि आप उसके समय को बहुत अच्छे तरीके से समझिए अगर आप उस फिलॉसफर को समझना चाह रहे हैं, और उस फिलॉसफर की फिलॉसफी को बिल्कुल आप यूं कह लीजिए कि पकड़ उस पर ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप ही वो फिलॉसफर हो। उसके समय को समझिए। दूसरी बात, आप फिलॉसफर को समझिए, यानी कि जो फिलॉसफर है उसकी जीवनी को भी थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश कीजिए। कहां पैदा हुआ, उसका पारिवारिक परिवेश कैसा था, कहां उसने पढ़ाई की, उसके कारण उसकी किस तरह की विचारधारा बनी, आप बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। अगर वो कुछ प्रोफेशन में रहा है तो बकायदे उन्हें भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का इसने काम किया, यानी कि उसका जो अनुभव जगत रहा वो अनुभव जगत कैसा था। क्योंकि देखिए, अब वो जो फिलॉसफी देगा ना, वो यहीं से निकल करके आएगी, हवा से नहीं निकल करके आएगी। अपनी पृष्ठभूमि को शामिल करेगा, जो एजुकेशन से उसने ली है वो चीजें आएंगी, अपने अनुभव जगत की वो बातें करेगा, उन सबको लेकर के ही वो अपनी विचार सरणियों का निर्माण करेगा। तो जब आप उसकी इस पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, फिलॉसफर की बैकग्राउंड को जान लेते हैं, तो फिर जो वो बातें कह रहा है उन्हें पढ़ पढ़ करके आप अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगेंगे कि हाँ भैया, अगर तू ऐसा रहा है तो ऐसी बात करेगा, ऐसा ही होगा। याद रखिए कि वो कोई बहुत नई चीज लेकर के नहीं आ रहा है, वो अपने अनुभव जगत में डुबकी लगाता है, अपने समय को देखता है और फिर वो अपने अनुभवों के आधार पर कुछ नए विचार दे देता है, बस दैट्स ऑल। तो जो फिलॉसफर है अपने आप में ही उसकी फिलॉसफी होती है, यानी कि फिलॉसफर को जान लेने के बाद आप उसकी फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ अपने आप ही जान लेते हैं। दोस्तों, हालांकि मैं अभी जो बातें आपसे आगे चल करके करूंगा वो इस पृष्ठभूमि में तो नहीं होंगी कि मैं आपको फिलॉसफर के जीवनी के बारे में बताऊं, क्योंकि हम लोग तो जनरल स्टडीज की दृष्टि से इस पर कुछ बातें करेंगे। लेकिन फिर भी यदि आप फिलॉसफी में रुचि रखते हैं, फिलॉसफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसके पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए। और मैं केवल फिलॉसफी के बलिए ये बात नहीं कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपने विचारक हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ जैसे अपने विचारक हैं, अगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र के अपने विचारक हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अपने विचारक हैं, हर सब्जेक्ट के अपने विचारक होते हैं। तो प्लीज डू दिस, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप देखिए कि आपको कितना मजा आएगा और आप चमत्कृत हो जाएंगे कि अरे बाप रे क्या मजा आ गया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है, तो अब मैं आप सबसे अब अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।